आशी को अनाथ आश्रम से गोद लिया गया था और इसका असली नाम विहा था। अपनी जिंदगी में आशिका की जगह भरने के लिए उसकी माँ काजल ने विहा को आशिका का नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही बाकी डॉक्यूमेंट बनाए थे, जबकि उम्र में आशी आशिका से कुछ महीने बड़ी थी। आशी को पूरे परिवार ने दिल से अपना लिया था, सिवाय आशिका की जुड़वा भाई यज्ञ के। ऊपर से आशी ने अभिमान से शादी करने की बात सबको बताई, उसके बाद से यज्ञ और नाराज हो गया था। सिंघानिया फैमिली के राजवंश फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते थे, बस अभिमान के अलावा। अपने गुस्से में यज्ञ ने आशी को थप्पड़ लगा दिया था। आशी रोते हुए ऊपर सीधे काजल के कमरे में पहुंची। वो रो रही थी और उसके गाल पर यज्ञ की उंगली के निशान बने हुए थे। आशी दौड़ते हुए कमरे के अंदर आई और काजल के गले लग गई थी। उसके अचानक इस तरह रोते हुए आने पर काजल घबरा गई थी। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ आशी बेटा, किसी ने कुछ कहा? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? आशी के हल्के से छींक आ जाने पर भी काजल परेशान हो जाती थी, यहाँ तो वो रोए जा रही थी। आशी भी अपनी तरफ से काजल की इस कमजोरी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करती थी। आशी तुरंत काजल से अलग हुई और उसने अपना गाल आगे कर दिया था। वो सुबकते हुए बोली, क्या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है मम्मा? मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ की तरह समझा है, इस घर की बेटी होने का हर एक फर्ज निभाने की कोशिश की है। ठीक है, मेरी नादानी में मुझसे गलती हो गई जो मैंने अभिमान से शादी कर ली, क्योंकि तब मुझे सच नहीं पता था। सच पता चलने के बाद मैं अभिमान के साथ गई भी नहीं, उसकी पत्नी होने के बावजूद उसे इतना प्यार करने के बाद भी मैं उससे अलग रहती हूँ, क्योंकि पापा और यज्ञ हमारी शादी को नहीं मानते हैं। और मैं क्या करूँ आप बताइए, जिसके बाद यज्ञ मुझे इस घर की बेटी मानने लगेगा? हालांकि आशी ने पूरी बात नहीं बताई थी, पर उसके इस तरह रोने और गाल पर थप्पड़ के निशान देखकर काजल सब समझ गई थी। काजल के चेहरे के भाव गंभीर होने लगे थे। वो उम्र में तृप्ति के बराबर ही थी, 46 साल के आसपास, लेकिन तृप्ति और काजल की लाइफस्टाइल में काफ़ी फर्क था। तृप्ति खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती रहती थी, जबकि काजल नेचुरली काफ़ी खूबसूरत थी। आशी को रोते हुए देखकर काजल का दिल टूट गया था। जब भी कोई आशी का दिल दुखाता था तब उसे इतना ही बुरा लगता था, फिर चाहे वो उसका खुद का बेटा यज्ञ ही क्यों ना हो। उसे इस वक्त यज्ञ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। काजल ने आशी को कुछ नहीं कहा और तेज कदमों से चलते हुए सीधे नीचे जा रही थी। काजल के इस तरह गुस्से में निकलने पर आशी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे थप्पड़ मारा था ना तुमने? तुमने मुझे चैलेंज किया कि तुम अभिमान को इस घर में कदम भी नहीं रखने दोगे, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद वो यहाँ कदम भी रखेगा और मुझे अपने साथ लेकर भी जाएगा। आशी ने सिर हिलाकर कहा और फिर जल्दी जल्दी अपनी पलकें चचखाने लगी ताकि फिर से उसे आंसू आने लगे। काजल को रोकने का दिखावा करते हुए वो उसके पीछे जाने लगी। आशी पीछे से सुबकते हुए बोली, प्लीज रुक जाइए मम्मा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और यज्ञ के बीच में किसी तरह की बहस हो। वो आपका खुद का बेटा है और मैं गोद ली हुई बेटी। प्लीज आप मेरी वजह से अपने बेटे से मत लड़िए, पहले ही आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपके परिवार में फूट नहीं डालना चाहती हूँ। आशी के कहते ही काजल के कदम वहीं रुक गए थे। वो उसकी तरफ पलटी और बिना किसी भाव के बोली, आशी आज के बाद ये शब्द अपने मुंह पर भी मत लाना कि तुम इस घर की गोद ली हुई बेटी हो। आज ही तुम कैसी बातें कर रही हो, इतने सालों में तुमने ऐसा नहीं कहा, क्या कोई कमी रह गई है बेटा मेरे प्यार में? नहीं मम्मा, आपने कुछ कमी नहीं की, आप लोगों ने तो एक अनाथ को अच्छी लाइफस्टाइल दी है। अगर आप कुछ कह भी दोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर यज्ञ बार बार मुझे एहसास दिलाता रहता है कि मैं कभी आपकी बेटी की जगह नहीं ले पाऊंगी। आशी ने नजरें झुकाकर कहा, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो तुम हो, फिर किसी की जगह लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इस दुनिया से चला गया है उसके लिए मैं अपनी बेटी का दिल नहीं दुखा सकती हूँ। अगर आज तुम यज्ञ की वजह से हर्ट होकर ऐसी बातें कर रही हो तो मैं उससे भी बात कर लूंगी, काजल ने सख्त आवाज में कहा। उसने आशी का हाथ पकड़ लिया था और उसे अपने साथ यज्ञ के पास लेकर जा रही थी। यज्ञ इस वक्त अपने डैड आशुतोष सिंघानिया के साथ स्टडी रूम में था। आशी से बहस करने के बाद वो सीधा उन्हीं के पास गया था। आशुतोष ने उसे पहले अपने काम के चलते बुलाया था, लेकिन बीच में वो आशी से भिड़ गया था। डैड, मैंने आपकी फाइल को तैयार कर दिया है, अगर डेटा रह गया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, बाकी कल यूनिवर्सिटी से फ्री होकर मैं ऑफिस आ जाऊंगा, यज्ञ ने एक फाइल आशुतोष को देते हुए कहा। यज्ञ आशिका का जुड़वा भाई था और एक बात उन दोनों में बिल्कुल समान थी, उन दोनों की आंखें ग्रेश ग्रीन कलर की थी। आंखों का ये यूनिक कलर उन्हें किसी और से नहीं बल्कि अपने पिता आशुतोष सिंघानिया से ही मिला हुआ था। यज्ञ के फेशियल फीचर्स काफी हद तक आशुतोष से मिलती थी, लंबा कद, गोरा रंग और खूबसूरत आंखें। आशुतोष, जिनका पूरा ध्यान लैपटॉप के अंदर था, वो उम्र में लगभग 50 साल के थे। उनके चेहरे के भाव बिल्कुल सख्त थे,
उन्होंने यज्ञ की बात का जवाब भी सिर्फ सिर हिलाकर दिया था। यज्ञ ने गहरी सांस ली और उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। वैसे भी उन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। जब काफी देर तक आशुतोष ने कुछ नहीं कहा तो यज्ञ जाने के लिए पलटा ही था कि उसके सामने काजल और आशी खड़े हो गए थे। उन्हें देखते ही यज्ञ ने आईज रोल की, फिर आ गई मॉम के इमोशंस का फायदा उठाने के लिए। पता नहीं इन लोगों को इस लड़की की चालबाजियां समझ क्यों नहीं आती हैं, यज्ञ ने मन ही मन कहा। काजल आंखों में गुस्सा लिए यज्ञ की तरफ देख रही थी। काजल के बिना कुछ कहे ही वो आशी के साथ क्यों आई होगी यज्ञ समझ गया था। वहीं काजल और आशी को अचानक स्टडी रूम में देखकर आशुतोष का ध्यान भी उनकी तरफ चला गया था। आशी की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप नीचे रख दिया था। उनके चेहरे पर भी परेशानी के भाव उभर आए थे। क्या हुआ आशी, तुम रो क्यों रही हो, आशुतोष तुरंत उठते हुए बोले। उन्होंने अपना चश्मा उतारकर साइड में रख दिया था और वो काजल के पास चले गए। आशी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसका ये मासूमियत का दिखावा देखकर यज्ञ के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हैं, अपने लाडले बेटे से पूछो जो जानबूझकर इसका दिल दुखाता रहता है, काजल ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आंखें यज्ञ को घूर रही थीं। आशुतोष ने यज्ञ की तरफ देखा तो उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए थे। वो जानता था कि उसने आशी को थप्पड़ तो लगा दिया था लेकिन आज उसकी अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें यहाँ पढ़ने की परमिशन मिलने के बाद तुम आशी के साथ अच्छा बिहेव करोगे, लेकिन अभी भी तुम बाज नहीं आ रहे हो। तुम 5 साल के बच्चे नहीं रहे हो यज्ञ, जो तुम्हें मैं डांट कर समझाऊं, आशुतोष ने कड़े स्वर में कहा। आज तो इसने हद ही कर दी, इसने आशी पर हाथ उठाया और उसे फिर से वही कड़वाहट भरी बातें कहने लगा। क्यों किया यज्ञ तुमने ऐसा, आशी तुम्हारी बहन है, इस घर को बेटी, फिर क्यों दिल दुखाते हो तुम इसका, काजल भरी स्वर में बोली।
जब आशी को गोद लिया गया था तब यज्ञ का बिहेवियर काफी एग्रेसिव हो गया था। वो आशी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ऊपर से आशिका के जाने के बाद काजल थोड़ा संभालने लगी थी। अपने परिवार को संभालने के लिए आशुतोष ने यज्ञ को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था और वो काफी कम घर आता था। बोर्डिंग स्कूल के बाद वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया और मुश्किल से ही कुछ महीने पहले वापस लौटा था। बीच बीच में जब भी यज्ञ आता तो उसका बर्ताव आशी के लिए खराब ही रहता, लेकिन अब तो पूरी तरह यहाँ आने के बाद वो उससे और भी बुरा बर्ताव करने लगा था। यज्ञ ने गहरी सांस ली और बिना किसी डर के कहा, मैं इसे एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बस इसे इतना ही तो कहा कि उस अभिमान राजवंश से तलाक ले ले, मैं खुद इसकी खुशियाँ चाहता हूँ, आखिरकार मेरी बहन है ये, तो एक कातिल के साथ इसका रिश्ता कैसे जुड़ने दे सकता हूँ। समझाइए इसे कुछ डैड, बताइए कि उस इंसान की असली सच्चाई क्या है, फिर शायद इसके दिमाग से प्यार का भूत उतर जाए। अगर आशिक काजल के इमोशंस का फ़ायदा उठाना जानती थी तो यज्ञ भी कम नहीं था। उसे पता था कि किस वक्त कौन सी बात करनी चाहिए, खासकर आशुतोष के सामने। अभिमान का नाम लेने से आशुतोष का गुस्सा अपनी तरफ से अभिमान की तरफ कर दिया था। आशुतोष ने गहरी सांस ली और यज्ञ से कहा, अपने कमरे में जाओ और जाकर काम करो। यज्ञ वहां से तुरंत चला गया था। जाते हुए उसने आशी को देखकर आंख मारी, मानो वो भी उससे किसी मामले में कम नहीं है। यज्ञ के जाने के बाद आशी ने आंखों में आंसू लिए आशुतोष की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा और दौड़ते हुए सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई थी। काजल उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसे आशुतोष से भी बात करनी थी। आशी के वहां से जाते ही काजल ने आशुतोष से कहा, आशु तुम्हें इस मामले में कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होगा। 2 साल हो गए हैं जब हमें अभिमान और आशी की शादी के बारे में पता चला है। दोनों बच्चे पिछले 5 साल से शादीशुदा हैं और फिर भी हमारी इच्छा का मान रखते हुए हमारी आशी आज तक हमारे खिलाफ नहीं गई। दोनों बच्चे उम्र में काफी कम थे जब साथ में एलए में पढ़ते थे। कम उम्र में ऐसी गलती हो जाती है, किसी और का क्यों एग्जाम्पल दूं, हम दोनों ने भी तो शादी की थी। मैं आशी की आंखों में ये तकलीफ नहीं देख सकती हूँ। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता काजल, जब भी मैं उस इंसान को देखता हूँ मेरे पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। उसने गलती की क्योंकि पहले आशिका को सच पता नहीं था, लेकिन अब पता है। उम्मीद है जल्द ही वो इस बात को समझेगी और अभिमान को तलाक देने के लिए मान जाएगी, आशुतोष ने सख्त शब्दों में कहा। वो भी उस वक्त बच्चा था और आपको इस बात को समझना होगा। अब तक मैंने इस मामले में कुछ नहीं कहा आशु, लेकिन क्या आज आशी की जगह आपके खुद की बेटी आशिका होती तो तब भी आप उसे अपने प्यार से अलग होने को कहते, काजल ने भारी आवाज में कहा। उसे लगा कि उसकी बातें शायद आशुतोष पर असर डालेंगी, पर आशुतोष का दिल पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उन्होंने बिना किसी भाव के कहा, उम्मीद है आगे से तुम उसका जिक्र नहीं करोगी, लेकिन फिर भी जवाब सुनना चाहती हो तो सुन लो। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि मेरी बेटी होती तो मैं क्या फैसला लेता, क्योंकि वो है ही नहीं। वो आज इस दुनिया में नहीं है तो अभिमान राजवंश की वजह से। तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैंने सच में आशी को अपनी बेटी की जगह दी है, तभी उसका फायदा सोच रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा।
काजल उसकी बातें सुनकर दंग रह गई थी, पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। इतने सालों बाद भी उनके जख्म उतने ही हरे थे। काजल ने एक पल आशुतोष की नम होती आंखों को देखा और फिर वहां से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ आशिका इस वक्त इशिका और अभिमन्यु के साथ थी। डिनर के बाद में उन्होंने काफी देर तक बातें की और अब इशिका और अभिमन्यु राजवंश मेंशन जाने के लिए निकल रहे थे। वैसे तो मैंने यहाँ सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है ऐश, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ बेझिझक होकर बताना। तुमने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए मुझे ठीक से थैंक यू कहने का भी मौका नहीं मिला, तो बस यूँ समझ लेना किसी तरह का एहसान नहीं कर रहा, बस तुमने जो किया उसका एक छोटा सा थैंक्स गिविंग कहने का तरीका है, अभिमन्यु ने आशिका को कम्फर्टेबल फील करवाने के लिए कहा। आप मेरे लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं मिस्टर राजवंश, पर मैं खुद नहीं जानती मैं यहाँ कब तक रुकने वाली हूँ। एक बार अच्छे से सेटल हो जाने के बाद मैं रहने की दूसरी जगह देख लूँगी, आशिका बोली। बिल्कुल नहीं, इशिका ने तुरंत उसे टोका, जो भी हो तुम यहीं रहने वाली हो, आगे से कभी जाने के बारे में सोचना भी मत। फिर तो आपको इस घर का रेंट लेना होगा मिस्टर राजवंश, आशिका ने अभिमन्यु की तरफ देख कर कहा। तुमने जो राजवंश एम्पायर का नुकसान होने से बचाया है उतने में आधी मुंबई के ऐसे फ्लैट्स खरीदे जा सकते हैं आश, उन्होंने काफ़ी डेटा ले लिया था, सो डोंट बी फॉर्मल। वैसे तुम्हारे लिए दो कमरा तैयार करवाए हैं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा और फिर इशिका के साथ वहां से जाने लगा। जाने से पहले इशिका और आशिका ने एक दूसरे को हग किया। अभिमन्यु और इशिका पहले दो दिन बाद राजवंश मेंशन जाने वाले थे, लेकिन आज वो दो दिन पहले इस तरह रात को वहां जा रहे थे तो इशिका को थोड़ा अजीब लग रहा था। हमें उन्हें एक बार बता देना चाहिए, इस तरह रात को जाने की वजह से वो बेवजह परेशान हो जाएंगे, इशिका ने थोड़ा असहज होकर कहा। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर प्लेफुल स्माइल थी, वो कंधे उचकाकर बोला, यकीन करो मिसेज राजवंश, अगर हम उन्हें इन्फॉर्म करके दिन में भी जाओगे तब भी वो परेशान ही होंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता हम कभी भी जाएं। अभिमन्यु पहले ही जानता था कि उसके वहां आने से राजवंश फैमिली में कोई भी खुश नहीं होने वाला है, फिर भी वो इशिका को लेकर जानबूझकर इस तरह देर रात को जा रहा था। वहीं अभिमन्यु और इशिका के जाते ही आशिका ने सबसे पहले रचित को मैसेज किया ताकि वो कल अपने प्रोजेक्ट के चलते उनसे मिल सके। रचित भी उसका मैसेज देखकर खुश हो गया था और उन्होंने सीधा एआर एम्पायर जाने का कह दिया था ताकि वो उसे अभिमान से मिला सके।